अब दूसरी मिसाल देखते हैं, दूसरी मिसाल देखें, पहली कौन सी थी जो बिल्कुल पक्के अंदर से काफिर हैं, किसी दुनिया की गर्ज मसलहत की वजह से मुसलमान बने हैं। दूसरी मिसाल उन मुनाफिकीन की है जो शक में पड़े हुए, ज़कात देते हैं, नमाजें पढ़ते हैं और चीज़ें करते हैं, और जो फ़ायदे हैं मुसलमानों के वो भी बड़ी अच्छे तरीके से कबूल करते हैं, लेकिन जब इस्लाम की खातिर कोई आजमाइश सहनी पड़े, कोई कुर्बानी देनी पड़े, तो कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। अब देखें इस मिसाल को, इसको भी आपकी तरफ से जो बहुत अटेंशन चाहिए ये मिसालें समझने के लिए। आओ कसयबिन, या मिसाल जोरदार बारिश की है। मीनस समाई, बारिश आसमान से ही उतरती है, लेकिन यहां पे खास तौर पे आसमान की बात क्यों की गई इसका अभी मैं इंशाल्लाह आपको बताती हूं। पहले आगे देखें, आसमान से बारिश उतरी, इस बारिश में क्या है, इस बारिश के साथ क्या है, या आसमान में क्या है, दोनों तरफ ये ही की जमीर जा सकती है। फीहि ज़ुलुमातुन, उसमें अंधेरे हैं, और रादुन, और कड़क है, व बर्कुन, और बिजली है। यानी आप इमेजिन करिए कि कुछ लोग जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको शान नज़ूल भी बताया ना आयात का, तो वो मुनाफिकीन भाग के जा रहे थे, रस्ते में इस तरह से बारिश शुरू हो गई और उसमें साथ अंधेरे भी हैं, कहीं कड़क भी है, बिजली भी है, चमक भी है, ये इमेजिन कीजिए। अब यहां पे क्या मतलब है इस चीज का, शदीद बारिश क्या जाहिर कर रही है? इससे मुराद है वही इलाही, जो एहकामात नाजिल हो रहे थे ना, आप देखिए मदीना में आके एहकामात नाजिल होने शुरू हो गए, ये करो ये नहीं करो, ये करो ये नहीं करो, ये नहीं करो ये नहीं करो। मक्की दौर में क्या था, तौहीद, रिसालत और आखिरत, इन्हीं तीनों के गिर्द ही सारी सूरतें घूम रही हैं। आपने देखा हमने 29वें 30वें पारे में जिन्होंने मुकम्मल किया अल्हम्दुलिल्लाह, तो मक्की सूरतों में आपने थ्रू आउट यही पढ़ा है ना, कहीं क़यामत का जिक्र है, आखरत का जिक्र है, कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के ऊपर दलायल हैं, तो ये बातें, कहीं तौहीद की बात है। जब मदीना में मुसलमान आ गए तो अब एक स्टेट कायम हो गई। अब वहां पे जाहिर सी बात है हर एक चीज के बारे में डूज एंड डोंट्स बताए जाने चाहिए थे, ताकि मुसलमान रहती दुनिया तक जो भी आए वो यहां से रहनुमाई ले सके, इनके लिए गाइडेंस बन जाए। जितने भी लॉज थे, जितने भी चाहे स्टेट को चलाने के या अपनी सोसाइटी में रहने के आदाब माशरत के, वो सारे मदीना में नाजिल हुए, ठीक है। तो अब जब ये सारे अहकामात नाजिल हो रहे हैं, ऊपर तले अहकामात नाजिल हो रहे हैं, तो ये कैसे हैं, जैसे जोरदार बारिश जो इंटेंस होती है ना, हार्ड होती है। पिछली मिसाल में क्या था, दिया, वो था रोशनी थी, वही को क्या कहा गया, रोशनी, रोशन कर दिया ना, एक आदमी है उसको वही मिली तो नबुवत मिलेगी ना, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया रोशन की, आग जलाई, नार रोशन की। तो यहां पे क्या है, यहां पे बारिश की बात है, बारिश को वही कहा गया, वहां पे दिया कहा गया था, वो कंफर्टिंग है क्योंकि उससे रास्ता भी देखा जा सकता है और सर्दी से बचा भी जा सकता है। अब यहां पे सैयब है जो सख्त होती है, शदीद होती है, तो वही में दोनों चीजें ही होती है ना, वही में कंफर्ट भी है, सॉफ्टनेस भी है, वही में दूसरी तरफ शिद्दत भी होती है, ऐसे अहकामात भी होते हैं जो इंसान के लिए बोझल होते हैं। तो अब सैयब आई मिनस समाई, अब यहां पे हिकमत देखें, जब आप यहां पे लिख लेंगे कि मिसाल, इनकी मिसाल ऐसे है जैसे एक पूरा सिनेरियो दिखाया गया ना, उन लोगों की मिसाल जोरदार बारिश की तरह ये नहीं है, बल्कि इन लोगों की मिसाल को ऐसे समझे कि जैसे एक पूरा आपको एक सीन दिखाया जा रहा है, जैसे बहुत जोर की बारिश हो रही है। ये बारिश क्या है, ये वही है जो कहां से उतरती है, मिनस समाई, आसमान से, ठीक है। अब समझ आई कि मिनस समाई क्यों कहा, वरना बारिश तो आसमान से ही उतरती है, जमीन से थोड़ी निकलती है। तो ये अल्लाह ताला के अहकामात हैं जो ऊपर तले आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, कहां से क्या होते थे अल्लाह के अहकामात, ये कुरान, यानी कुरान उतर रहा है आसमान से। आसमान से, आसमान से ऊपर से ही आया ये कुरान। अब इसमें क्या है, इसमें जुलुमात भी है, रात भी है, बर्क भी है, अंधेरे भी हैं, कड़क भी है, बिजली भी है, ये क्या चीज है। अब एक इसको इसको इस सिनेरियो में देखें कि यानी ऐसे अहकामात उतर रहे हैं जिसमें मुनाफिकीन के, उससे देखें एक सिनेरियो से देखें कि जिसमें कोई इनकी बात पकड़ी गई हो या इनको कोई वॉर्न किया जा रहा है या इनको कोई ऐसी बात बताई जा रही है जो इनके लिए बड़ी मुश्किल है। जुलुमात में क्या आ गया, मुश्किल अहकामात। अब करने तो सभी के लिए मुश्किल होते हैं, लेकिन जो पक्के मोमिन है वो क्या करते हैं, जब जब अब आपके लिए भी तो देखिए सुभान अल्लाह, आपके लिए भी ऐसे ही है जैसे कुरान अभी नाजिल हो रहा है। खास तौर पे वो लोग जो नए अभी स्टूडेंट बने हैं उनके लिए तो आज ही कुरान नाजिल हो रहा है ना, चाहे 1400 साल पहले उतरा हो, लेकिन जब कुरान से ना वाकिफ थे तो उनके लिए तो कुरान का नाजिल होना ना नाजिल होना तो बराबर है, जब समझ ही नहीं थी। तो अब जब समझ आने लगे तो इसके अहकामात उतरने लगते हैं, फिर दिल पे आपके उतरते हैं। अब कुछ तो होते हैं पक्के मोमिन, पक्के ईमान वाले, वो कहते हैं भाई जो भी अल्लाह का हुक्म आया, चाहे जान देने का हुक्म है, चाहे माल देने का हुक्म है, चाहे अपने बीवी बच्चे छोड़ने का, बाल बच्चे छोड़ के निकलो घरों से, जाओ जंगों में, जाओ लड़ो जाके वहां पे, वहां पे जाहिर है कई लोग हैंडीकैप्ड हो जाएंगे, आजा कट जाएंगे उनके, कहीं शहीद हो जाएंगे, वापस ही नहीं आएंगे, तो बीवी बच्चों का क्या होगा पीछे, अच्छा हमारी तजारतों का क्या होगा, हमारे बाग हैं खड़े हुए हैं, हमारे बागों में इस वक्त फल पक रहा है, अब ये कह रहे हैं बाहर निकलो, अभी कह रहे हैं अपना माल लेकर आओ और अल्लाह के दीन को जरूरत है, तो ये बड़े मुश्किल काम है, ये तो मुश्किल अहकामात है। तो ये उनके लिए, कईयों के लिए मुश्किल थे, मुश्किल सबके लिए, मुश्किल तो हर एक के लिए है ये, लेकिन कुछ लोग है ना जो कूद जाते हैं, वो कहते हैं ठीक है जो भी है अब होगा सो होगा, अब बस हमने कर गुजरना है। तो ऐसे लोगों के लिए जो कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं ना, तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, फनुयस्सिरुहु लिल्युसरा, अल्लाह ताला आसानी के लिए आसानी कर देता है, अल्लाह ताला फिर उनके लिए आसानियां कर देता है जो कूदने को तैयार हो जाते हैं। ठीक है, जो कह देते हैं हमें परवाह नहीं, अब चाहे कोई ताने दे, चाहे कोई हमसे कटे, चाहे कोई हमसे नाराज हो, हमें नहीं फिक्र है, अब चाहे बाल बच्चे छोड़ने पड़े, वो चलने का इरादा उन्होंने कर दिया है ना, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों के लिए आसानियां करता है। मेरी बात समझ आ रही है आपको, वो बाज लोग आसानियां कब चाहते हैं, हम अभी तो कदम उठाएं भी ना, हमारे लिए आसानियां तो पहले ही हो जाए, ऐसे नहीं हुआ करता कभी भी, ऐसे नहीं होता। इसमें होंगी जुलुमात होंगी, ऐसे इसके लिए आपको आसानी के लिए आपको पहले कदम उठाना पड़ेगा, आप पहला कदम उठाते हैं तो अल्लाह ताला 10 कदम आता है आपको थाम लेता है। ठीक है, आप तो पहला कदम ना उठाएं और आप कहें कि अच्छा फिर इस चीज का क्या होगा, मेरी फलानी चीज का क्या बनेगा, अगर मैं इस तरफ आ गई तो फिर फलां क्या कहेगा और वो क्या होगा, अगर आपके इतने खदशात हैं, अभी आपने कदम उठाया ही नहीं, आप कहते हैं पहले सारे मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हों तब मैं कदम उठाऊंगी, तब मैं ये स्टेप ले सकती हूं, तब मैं मानूंगी, तो सॉरी फिर नहीं है अल्लाह की तरफ से आसानी होती। आसानी तब है जब आपने कदम उठा लिया, वो चीज आपके लिए देखिएगा आसान से आसान होती चली जाएगी। क्यों ऐसे होता है बताएं कि कुछ चीजें आप लोगों को करते हुए देखते हैं तो आप सोचते हैं ये तो बड़े आराम से कर रही है, इसके लिए कैसे ये कर लेते हैं, हमें तो समझते हैं भाई हम में तो इतनी हिम्मत नहीं, इन्होंने कैसे कर लिया। जनरल बात आप सोचें, देखिए आपके लिए वो बात पहाड़ बराबर आपको लग रही है, लेकिन लोग दूसरे आराम से कर रहे हैं, वो कैसे है, इसलिए कि फसनु यस्सिरुहु लिल्युसरा, अल्लाह आसानी कर देता उनके लिए। वो लोग भी जब चले थे तो मुश्किल थी, लेकिन जब वो चलते गए तो उसके बाद उन लोगों को लगा ओहो ये तो कोई मुश्किल था ही नहीं, मैं ऐसे ही सोच रही थी मुश्किल है, क्योंकि जब इंसान चल पड़ता है ना, कई चीजें आप देखें जो पहले से पढ़ रहे हैं लोग उनको मैं कहूंगी, आप कई चीजें देखें, आप सोचते थे ना कितनी मुश्किल है ये, कितनी मुश्किल है भाई ये, मुश्किल है, लेकिन जब आपने करने शुरू हुई तो अब आपको कैसा लग रहा? अब आपको लगता इसमें तो कोई मुश्किल थी नहीं, मैं ऐसे ही डरती थी, है ना? तो जब इंसान उस तरफ नहीं आता ना, तो दूर से बैठे हुए उसको मुश्किल ही लगता है, लेकिन जब इंसान उसमें कूद जाता है तो अल्लाह ताला मदद फरमाता है और वो तैरना शुरू कर देता है। फिर वो सोचता है ओ कहाँ मुश्किल थी, ये तो आसानी है। तो ये लोग भी चूंकि हिम्मत हौसला था नहीं, बुजदिल थे, ईमान कमजोर है, ईमान तो ले आए कमजोर है, अब इस रास्ते में कदम कदम पे आजमाइशें, कदम कदम पे इम्तिहान, आप देखिए आयतों पे आयतें उतर रही हैं, आयतों पे आयतें उतर रही हैं, इससे लड़ना है तुमने, उससे करना है, हौसला करो तुम, ये दो ऐसे करो, फिर क्या होगा, सब्र भी करो बर्दाश्त भी करो, अब ये कहाँ से हम करें? तो ये हैं जुलुमात। अच्छा, ये सिर्फ अब उनके लिए ना, आप सोचें जब हम कुरान को पढ़ने लगते हैं ना, तो हमारे सामने भी डिफरेंट तरह के अहकामात आते हैं, अपने ऊपर भी रख के सोचे, जब वही की बारिश बरसती है, अब आगे आगे आप देखेंगे मदनी सूरतों में तो अहकामात हैं अहकामात हैं अहकामात हैं, तो कई मुश्किल अहकामात हैं। तो जुलुमात से क्या मुराद है? जो मुश्किल चीजें थी, जो करनी बहुत मुश्किल है नफ्स के लिए, लेकिन जाहिर है जो जब तेज बारिश होगी तो उसके अंदर अंधेरे तो होते हैं, जाहिर है बादल, देखें जब बादल बहुत घने होते हैं तभी तेज बारिश होती है ना, तो ये, और जब घने बादल होंगे तो अंधेरा छा जाता है ना, तो जब वही आएगी तो उसमें मुश्किल अहकामात भी होंगे। वह रादुन, और राद है कड़क है। अच्छा, कड़क क्या चीज होती है? बहुत जोर से कड़क बाहर हो तो क्या होता है, आपको डर जाते हैं ना एकदम, तो डरावे भी हैं उसमें, वार्निंग्स भी हैं, देखो अगर ऐसे नहीं किया तो जहन्नुम की आग है तुम्हारे लिए, ये है तुम्हारे लिए, ऐसा आजाब है, देखो आखिरत में क्या जवाब दोगे, अल्लाह की पकड़ है इसके ऊपर, तो कड़क भी है, वईद भी है, डरावे भी हैं। वह बर्क, और बर्क भी है बिजली, बर्क वैसे हर चमकदार चीज के लिए भी आता है, रोशनी के लिए भी आता है। अच्छा, जब बिजली होती है अंधेरी जगह, सोचे जब उसके अंदर बिजली चमकती है, मैंने आपको वो दो मुनाफिकीन की बात बताई ना जो चल रहे थे, बाद में तो सच्चे मुसलमान हो गए, लेकिन मैंने आपको उसमें क्या बताया कि जब चमकती थी बिजली तो फिर थोड़ा सा चल लेते थे, इसलिए क्योंकि वो वहां पे रोशनी थोड़ी होती थी, अब बिल्कुल अंधेरा छा गया, एक वैसे ही रात हो अंधेरा हो, ऊपर से ये ऐसा बारिश हो रही है और बादलों का भी अंधेरा हो गया, कड़क है, लेकिन जब बिजली चमकती है तो रास्ता एकदम नजर आ जाता है ना, तो रोशनी भी होती है, तो बिजली एक उम्मीद भी लाती है ना, तो यानी उम्मीद अफजा बातें भी हैं उसमें, कहीं पे ये है कि अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत देगा, कहीं पे ये है कि आसानियों की बातें हैं, आसानी आसान अहकामात हैं, कहीं फायदे की बातें भी हैं, कहीं मुसलमानों की कामयाबियों की बातें भी हैं, बशारतें भी हैं। अच्छा, अब क्या होता है, अब इनका रिएक्शन क्या है? अब आपने ये पूरा सीन देख लिया ना कि क्या है, कोई लोग जा रहे हैं और उस बहुत जोर से बारिश हो रही है और अंधेरा भी है और कड़क भी है और कहीं कभी कभी बिजली भी चमकती है, लेकिन ऑफ कोर्स बिजली हर वक्त नहीं चमकती। अच्छा, अब है, अब क्या इनका रिएक्शन क्या है? यजालूना असाबिअहुम फी आदानिहिम, वो डाल लेते हैं अपनी उंगलियां अपने कानों में, क्यों, मिन असवाइकी, बिजली की कड़क से, हज़र अल मौत, डरते हुए मौत से, मौत के डर की वजह से कि हम कहीं मर ना जाएं, बिजली इतनी जोर से धमाका होता है, इतनी जोर से कड़क होती है, तो जैसे बच्चे नहीं कानों में उंगलियां डाल लेते, तो इन्होंने अपनी कानों में अपनी पूरी पूरी उंगलियां ठूंस ली हैं, इतने ये डरे हुए हैं। इसका क्या मतलब है? यानी अब ये जो अहकामात उतर रहे हैं ना, अब वो कड़क भी है और अंधेरे भी हैं, और ये, और खास तौर पे जब बिजली की कड़क आती है, यानी ऐसे अहकाम आते हैं जो इनको ना पसंद है, जो होश हवास गुम कर देने वाले हैं, یہ ایسی آیات جو ان کا بھی پول کھول دینے والی ہیں کہ منافقین ایسے کریں. آپ کو پتہ ہے منافقین کی کتنی بات آتی ہے, بلکہ ایک سورت پوری سورت المنافقون ہے, منافقین کے حالات کے بارے میں ایک پوری سورت ہے. پھر سورہ توبہ میں بھی ان کے کچے چھٹے کھولے گئے, سورہ عذاب میں بھی ان کی باتیں آئیں. تو منافقین کے اوپر کئی آیتیں آتی تھیں. اب کیا ہوتا تھا, اب یہ جب اللہ کا کلام اتر رہا ہے تو ان کے لیے تو ایسے ہے جیسے یہ سائقہ ہے. اب ان کو یہ ڈر ہوتا تھا, ہائے کہیں اب ہمارے بارے میں نہ کوئی آیت اتر رہا ہے, اب یہ نہ ہو کہ ہمارے کوئی پول کھلے, ہماری باتیں ہی نہ بتا دی جائیں, یہ نہ ہو کہ کوئی کہیں آ جائے حکم کہ ان کو قتل کر دیا جائے, پھر ہمارا کیا بنے گا. اب یہ نا تہائی ڈرپوک بھی ہے نا کہ ہائے ہماری جان نہ چلی جائے, ان کے ڈرپوک نہ کو کیا کیا نا. ہم دیکھیں کتنے ڈرے رہتے ہیں آج, ہر بات سے ذرا ذرا سی بات سے ہم ڈر جاتے ہیں, ہائے کہیں ہماری نہ پکڑ ہو جائے, ہائے کہیں ہم نہیں. اگر حق پہ ہو تو ڈر کس بات کا. تو ان کے جو بھی احکامات آ رہے تھے, جو بھی اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے نا, تو ان کو بس یہ ڈر ہے کہ کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے, کہیں ہماری بات یہ جو ہمارے اندر نفاق ہے یہ نہ کھل جائے, یہ نہ اللہ تعالیٰ ان کو بتا دیں کہ یہ تو پکے سچے ہیں ہی نہیں, یہ تو بس اوپر اوپر سے ہوئے میں, اور یہ تو ان کے دلوں میں کتنے گرجز ہیں, یہ ہمارے پول ہی نہ کھل جائیں. تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں, کیونکہ ان کو یہ ڈر ہے کہ کہیں اب موت ہی نہ آ جائے, یعنی اتنے ڈرے میں ہیں اور سننا بھی نہیں چاہتے. کانوں میں انسان انگلیاں کیوں ٹھوستا ہے؟ ایک تو یہ وہ سمجھتا ہے کہ کیا میں اس وجہ سے بچ جاؤں گا, اگر موت آنی ہے یا اگر بجلی گرنی ہے تو اس کی کانوں میں انگلیاں ٹھوسنے سے کیا بجلی رک جائے گی؟ یہ تو اس کو بچا نہیں سکتی. تو کانوں میں انگلیاں ٹھوسنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سننا نہیں چاہتے, وہ نہیں چاہتے کہ پتا چلے ان کو. تو ایسے پریٹینڈ کریں جیسے ہمیں سنا ہی نہیں. تو واقعی کچھ لوگ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں نا, یعنی وہ سننا ہی نہیں چاہتے اللہ کے کلام کو, اللہ کے احکامات کو. بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہائے اس میں تو ڈراوے اتنے ہیں نا, اتنا ڈراتے ہیں, بس ہم سے تو نہیں سنا جاتا قرآن, اور ہمیں ڈپریشن ہو جاتی ہے بس. اور اگر کوئی بات کر رہا ہو نا کوئی آخرت کی, کوئی قیامت کی یا موت کی, تو کہتے ہیں ارے کچھ اور بات کرو, تم کیا ڈپریسو باتیں شروع کر دی ہیں, کیوں یہ ہوتا ہے؟ کیا اس کی وجہ سے موت ٹل جائے گی؟ کیا اس کی وجہ سے آخرت نہیں آنی؟ کیا اس کی وجہ سے جہنم کو وہ نہیں دیکھیں گے؟ نہیں, وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح بچ جائیں گے, ہم نہیں سنیں گے تو ہم بچ جائیں گے. کیا یہ روک دے گا بجلی کے گرنے کو؟ یہ تو ایسے ہی ہے, بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے تو کیا بلی چلی جاتی ہے, خطرہ ٹل جاتا ہے؟ نہیں, خطرے میں تو تم ہو, تم سنو یا نہ سنو, یہ تو سامنے تمہیں پیش آنا ہے, اس کو کیسے اوائڈ کرو گے؟ بعض لوگ سننا ہی نہیں چاہتے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ڈپریس نہ ہو جائیں. ان کو یہ ہوتا ہے کہ کہیں ہماری بھی شامت نہ آ جائے, چور کی داڑھی میں تنکا والی بات ہے, ہماری باتیں نہ ہو رہی ہوں, ہم بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کچھ اور ٹاپک کرو نا, کوئی اور بات کرو, کیسے سنیں, یہ تو ساری ہماری ہی کیفیت ہے. تو سننا نہیں پسند کرتے. ہر حکم کے اوپر, ہر بات کے اوپر ان کو ایسے لگتا ہے کہ ان کی جان ہی نکل جائے گی, حدر الموت. ایسے لگتا ہے کہ یہ دین کے احکامات نہیں ہیں, جیسے ہماری بس موت کے منہ میں جانا ہمیں پڑ گیا ہے. واقعی کئی لوگوں کے لیے اللہ کے احکامات ایسے ہیں کہ یہ مرنے لگے ہیں جیسے, کیسے ماننے. آج تو خیر اتنی ریکوائرمنٹ ہی نہیں, تو کسی کو شاید ایسا لگتا ہی نہ ہو. اس وقت تو ظاہر ہے ایکسپیکٹڈ ہوتا تھا کہ ابھی آیات اتری ہیں تو مسلمانوں کو ماننی ہے, اور سارے جو پکے مسلمان ہوتے تھے وہ کرنے لگتے تھے. اب کیا ہوتا تھا, اب جو پکے مسلمان ہیں وہ لبئی کہتے ہیں, فوراً حکم پہ حاضر ہو جاتے ہیں, فوراً عمل شروع کر دیتے ہیں. تو اب ان کے تو پردہ اٹھ گیا نا, کیونکہ جب یہ نہیں کریں گے تو اسی لیے تو ان کو اتنا غصہ آتا تھا مسلمانوں کے اوپر, مومنوں کے اوپر, کہ کہتے تھے یہ کیا اتنے دیوانے سے ہیں, اتنے ایکسٹریمسٹ ہو گئے ہیں یہ, بس ہر بات کو فوراً ماننے شروع کر دیتے ہیں. کیونکہ وہ مانتے ہیں نا تو اب ان کا پردہ کھلتا ہے. اگر تو سارے ہی نہ مانیں نا تو پھر تو یہ بھی اندر چھپے رہیں گے نا, سارے ہی نہیں مان رہے. مثال کے طور پہ ایک کلاس میں کہا جائے कि भई आप से आपकी क्लास जो है ना 4 दिन हफ्ते में हुआ करेगी। तो बाज़ लोग हैं बहुत खुश होंगे, वो कहेंगे बहुत अच्छी बात है, हमें इसकी बड़ी खुशी है। बाज़ लोगों के लिए ऐसे होगा कि हाय मरने लगे हैं, हाय नहीं, नहीं नहीं। अब वो कहते हैं कि ये उनको कितना गुस्सा आता है कि ये जो लोग हैं ना, ये बस हर वक्त जब ज्यादा भी पढ़ाओ कुछ भी करो तो ये बस हर वक्त खुश ही रहते हैं, इनकी वजह से हम भी मुसीबत में फंसते हैं। अब हम अगर कहेंगे नहीं करो तो हम लाइमलाइट में आ जाएंगे, हमारा सबको पता चल जाएगा कि अच्छा ये हैं जो नहीं चाहते, इनको तो कोई मोहब्बत नहीं है कुरान से। तो अब इस तरह से इसको इस एग्जांपल से ये सिर्फ मैं बताना चाह रही हूँ, देखिए कुछ लोग जब बहुत आगे बढ़ जाते हैं ना तो वो जो पीछे रहने वाले होते हैं उनकी जान मुसीबत में आ जाती है। कि अब लोगों को पता चल जाएगा कि अच्छा ये तो कोई ज्यादा सिंसियर नहीं है, अब उन्होंने ये भी तो दिखाना था ना कि हम बहुत सिंसियर हैं, हम बहुत अच्छे हैं। मसला तो तभी होता है ना जब इंसान दो कश्तियों का सवार होता है, इधर भी अच्छे अच्छे बन के रहना, उधर भी अच्छे अच्छे बन के रहना। तो अब इधर भी अपनी फेस सेविंग करनी है, कैसे करें? अब फेस सेव तो होता नहीं है क्योंकि ये आगे बढ़ जाते हैं और हम फिर पीछे रह जाते हैं, तो सबको फिर पता चल जाता है। वे मुसलमान फिर बाद में बातें भी करते थे कि भाई देखो तुम उस वक्त क्यों नहीं आए, तुमने क्यों नहीं ऐसे किया, जब तुम्हें बुलाया गया तुमने क्यों नहीं? तो फिर इनको झूठे बहाने करने पड़ते थे, झूठी कस्में करानी, नहीं कसम से हमारा तो ये प्रॉब्लम था, कसम से कसम उठवा लो हमसे, फिर ये करना पड़ता था। तो आज तो चूंकि ये कोई अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता ही नहीं है ना कि उसने अमल करना है, तो इसलिए जितना मर्जी सुनाते जाओ क्या फर्क पड़ता है। उनके लिए इसलिए होता था कि वो मरने ही लगे हैं क्योंकि अब वो कहते थे किस मुसीबत में हम फंस गए, हम तो अच्छा इस्लाम लाए हैं। देखिए एक सोसाइटी को देखिए ना, बड़े आराम से रह रही है, जैसे मर्जी रह रही है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, इस्लाम आ गया, मदीना जो है वो हर वक्त एक खतरे के उसके अंदर है, समझने कभी खतरा है यहां से हमला हो जाएगा, कभी खतरा है वो हमला कर देंगे, कभी यहूदियों के साथ एक यानी हर वक्त एक चपकलश चल रही है, कभी वो साजिशें कर रहे हैं तो कभी कुर्बानियां मांगी जा रही हैं, तो हमारी तो जान मुसीबत में आ गई। तो ये मसला अब इनको हो रहा था। ये बताएं कि क्या कुरान को सुनने से डरना इस वजह से कि इसमें डरावे बहुत हैं, क्या ये वाकई एक मुत्तकी का तरीका हो सकता है? क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा था ना कि निजात तो सिर्फ मुत्तकीन को मिलेगी, कामयाबी सिर्फ उनको मिलेगी, लेकिन ये तो अपनी उंगलियां ठूंस रहे हैं कि हमें सुनाई ना दें अल्लाह के अहकामात, इनमें डरावे बहुत हैं। तो क्या ये मुनाफिकीन का तरीका है या मोमिनों का तरीका, ये बताएं, किनका जिक्र हम पढ़ रहे हैं? लेकिन आज भी हम फिजिकली ना सही और अपने जुबाने हाल से आके ही कानों में उंगलियां ठूंसे रहते हैं कि हम नहीं ये सुनना चाहते, सुन लिया तो अमल करना पड़ेगा। लेकिन ना इसी वजह से तो नहीं सुनना चाहते, उनका भी तो यही प्रॉब्लम था कि सुन लेंगे तो फिर अमल तो हमने करना नहीं है, हमारी तो जान मुसीबत में आ गई है, तो हम तो ऐसे ही करते हैं कि जैसे हमने सुना ही नहीं, सुनना नहीं चाहते, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए जुलुमात हैं, ये हमारे लिए राद है, मुश्किल है काम आते हैं, इसमें डरावे हैं हमारे लिए। तो ये यजालूना असाबिअहुम फी आज़ानिहिम, ये असल में दीन के अहकामात पे अमल करने से इनकार है उनका कि हमने नहीं चलना, तो ये बातें हमें सुनी ही नहीं, ना सुनेंगे तो ना कुछ करेंगे। हम सब अपने अपने दिल का हाल देखें, हम कितना शौक रखते हैं कुरान सुनने का, सुनने से मतलब है इसको समझने का, क्योंकि वैसे तो पढ़ता पढ़ते भी जाएं तो हमें कहां समझ आती है, तो कितना हमें शौक है, या हम भी तो नहीं कानों में उंगलियां ठूंसे हुए, हमें भी तो नहीं इसके अहकामात जुलुमात लगते और राद लगते अपने लिए। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, और अल्लाह अहाता किए हुए काफिरों का, कौन से काफिर, यहां पे तो मुनाफिकीन की बात हो रही है, काफिर किसको कहा गया, अल्लाह ताला इन्हीं को काफिर कह रहे हैं, क्योंकि ये अमली कुफर है, अमल में इनकार कर देना, जुबान से इकरार करना और अमल में इनकार करना, یہ بھی کفر ہے، اس کو عملی کفر کہتے ہیں یا چھوٹا کفر کہہ لے. کفر اکبر کیا ہے؟ جن کا وہ بات ہے کہ وہ زبان سے بھی انکار کر دیں، وہ کفر اکبر ہے. اور ایک کفر دوسرا ہوتا ہے جو عمل سے انسان انکار کر دیتا. یہ قید البرقو، اب ان کا کیا حال ہے؟ قریب ہے کہ بجلی، یختفو ابصارہم، ان کی نگاہوں کو اچک لے. پچھلے اگزامپل میں آپ نے دیکھا نا کہ ان کے نور اللہ نے لے لیے، ان کے تو لے لیے گئے نور، وہ تو اندھے ہو گئے. ان کا کیا ہے؟ قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو اچک لے، یعنی بہت ممکن ہے. یقادو کس چیز کے لیے آتا ہے؟ کوئی ایسا کام جو بس ہونے والا ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے. ہو سکتا ہے جلدی کہ بجلی ان کی نظریں اچک لے، یعنی اب ان کے اندر سے بھی توفیق چھن جائے، حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ان کی بھی ختم ہو جائے، ان کو بھی سمجھ ہی نہ آئے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، ان کو بھی برائی اور بھلائی کا فرق، ان کے اندر سے جو فرق کرنا ہے اس کی صلاحیت ختم ہو جائے. وہ بھی ایسے ہی انسان سوچنے لگے جیسے کہ کافر سوچتے ہیں نا، اسی طرح وہ بھی دین کے بارے میں سوچنے لگے. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اس کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے. ان کی ابھی ختم نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یکیدو، قریب ہے. ان کی اس کام کی وجہ سے، ان جو یہ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے بہت ممکن ہے کہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہو جائے. ان کو اسلام میں خیر پھر نظر ہی نہیں آئے گی، ان کو بھی کافروں کی طرح اسلام میں مین میخے نظر آئیں گی، پرابلمز نظر آئیں گے، اعتراضات نظر آنے لگیں گے. لیکن ابھی یہ ہوا نہیں ہے، بٹ دے آر کلوز ٹو اٹ، بہت کلوز ہیں اس چیز سے. کلما اضاء لهم مشوا فی، جب کبھی اس نے روشنی کی، کس نے کی روشنی؟ وہ برق نے، برق ہے نا چمکتی ہے، تو جب کبھی اس برق نے روشنی کی، لہم ان کے لیے، مشاؤ فی، وہ چل پڑے اس میں. سبحان اللہ، کیسے لوگ ہیں کہ جو ہی روشنی ہوتی ہے نا، روشنی میں نے کیا بتایا، برق کے نیچے آپ نے لکھا ہے کیا ہے برق، برق میں کیا ہے؟ امید والی باتیں، خوشخبریاں، مسلمانوں کو کوئی فائدے حاصل ہو رہے ہیں، کوئی ایسی بات اچھی جو ان کے لیے فائدوں کی بات ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ مشوفی، تو اس میں چل پڑتے ہیں. یعنی جب کبھی ایسے احکامات نازل ہوتے ہیں جو ان کی کنوینئنس پہ ہوتے ہیں، جس میں ان کو سہولت ہوتی ہے، جو ان کی ایز والے ہوتے ہیں، آسانی والے ہوتے ہیں، وہ جب آتے ہیں نا، ایزی چمک والے، تو اس میں کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کو کرنے میں کچھ بھی کھپنا نہیں پڑ رہا اس کے لیے، تو پھر کیا ہے، پھر کر بھی لیں گے. ایسا نہیں کہ کبھی بھی نہیں کرتے، ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، کبھی کبھی کر لیتے ہیں، مگر ایٹ دیئر اون کنوینئنس. ان کو کنوینئنس والا دین چاہیے نا، ایسا تھوڑی کہ بس جو آپ کہیں ویسے ہی ہم کریں، ہم نے اپنی زندگیاں تھوڑی بیچ دی ہیں. اچھا دین ہوگا، مسجد میں ہوگا اور وہ ہوگا، لیکن ایسا نہیں کہ اب ہم ہر چیز ہی دین کی مانیں، اتنے بھی نہیں ایکسٹریمسٹ ہونے کی ضرورت نا. تو بھائی دیکھو، جو ایزی ایزی ہیں وہ کر لیتے ہیں. اب ان کو کیا ایزی لگتا تھا، چلو پھر ٹھیک ہے نماز پڑھ لی. اب نماز بھی جو ہے نا، یہ فجر کی نماز اس کے پر بڑی بھاری ہوتی ہے، منافق پہ اٹھنا پڑتا ہے نا، مسجد جانا بھی بھاری ہوتا تھا، لیکن کیا کریں، پھر مسلمان کہیں گے کہ اچھا یہ منافق ہے، تو پھر ہم یہ تو نہیں نا یہ کہلوانا چاہتے. ان کو بھی تو خوش کرنا ہے نا، ان کو بھی راضی رکھنا ہے کہ ہم دیندار ہیں. اب وہ دین کا بھی ایک لیبل لگائے رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو سورۃ الحج میں فرمایا نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الحج میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ लोगों में से बाज ऐसे हैं जो किनारे किनारे पे रह के अल्लाह की बंदगी करते हैं, पूरे पूरे नहीं इस्लाम में दाखिल होते, किनारे किनारे पे। अगर भलाई मिले तो मुतमईन हो जाते हैं, खुश होते हैं कि भाई अच्छा कोई फायदे मिल रहे हैं इस्लाम की वजह से, तो मतलब कोई आसानियां हैं, तो फिर खुश हैं, फिर इट्स ओके, ठीक है, ठीक है, फिर चल पड़ते हैं उस पे। लेकिन अगर कोई बुराई पहुंचे तो उसी वक्त फिर गए। बुराई पहुंचती है यानी बुराई से मतलब क्या है, कोई मुश्किल अहकामात आ गए, कोई मुश्किलात आ गई, कोई कुर्बानी देने का वक्त आ गया, कोई जान माल मांग ली, कोई और मुतालबा कर दिया, तो या कोई आजमाइश आ गई इस्लाम के ऊपर, तो फिर वापस मुड़ जाते हैं, वापस चल पड़ते हैं, नहीं फिर नहीं 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 नहीं, ये नहीं हमसे हो सकता। फिर उसको ही कहा गया यहाँ पे, वइज़ा अज़लमा अलैहिम क़ामू, जब उसने अंधेरा किया, तारीख हो गया, मुश्किल अहकामात आ गए, ज़ुलुमात क्या थी, मुश्किल अहकामात नीचे लिख लिया ना आपने, तो जब अंधेरा आ गया उनके ऊपर, क़ामू खड़े हो गए, खड़े हो गए, फिर ठिठक के रह गए वहीं पे, अरे अब कैसे चलें, चलना क्या, किस चीज की अलामत है, अमल कर रहे हैं ना, और फिर वो उसी वक्त खड़े हो गए, नहीं 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 इस रास्ते पे हम नहीं चल सकते, नहीं ये तो बड़ा मुश्किल है, आजकल कैसे करें, इस जमाने में कौन इस्लाम पे चल सकता है, आजकल तो नहीं चला जा सकता, क्या करें फिर, हम अपनी दुनिया छोड़ दें दीन के पीछे। बस ये लोग तो कहते हैं बस कुछ ना करो, बस अल्लाह अल्लाह करते रहो, दुनिया छोड़ दो, ये तो इन्होंने अपनी, मौलवियों ने अपनी मन घड़त बातें बनाई हैं, सुनी अनसुनी कर देते हैं, वहीं पे खड़े रहते हैं, चलते नहीं है उस रास्ते पे, रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, मुश्किल जो आ गई है। इस्लाम के लिए अपनी कोई ख्वाहिश कुर्बान करनी पड़े, या अपने कीमती वक्त में से हमें थोड़ा सा वक्त निकालना पड़े, या जिस तरफ सारे लोग चल रहे हैं उससे ऑपोजिट हमें चलना पड़े, तो चलते हैं, नहीं नहीं बहुत मुश्किल है, ये नहीं हो सकता। कुर्बानी वाली अहकामात जिसमें हमें अपनी मर्जियां छोड़नी पड़े, जिसमें हमें अपने नफ्स के खिलाफ जाना पड़े, जिसमें हमें कोई अपने माशरे के खिलाफ चलना पड़े, जिसमें हमें कोई मुश्किल आ रही हो, जिसमें हमें कन्वीनियंस ना हमारी मिले, तो काम हो, ये सब चीजें हमारे लिए बहुत मुश्किल हैं, हम नहीं कर सकते, हम नहीं तैयार करने के लिए। हालांकि अगर इस पे चलते तो अल्लाह ताला उसमें आसानी कर देते, मैंने आपको बताया ना अभी। तो टाल मटोल कर देते हैं, सुनी अनसुनी कर देते हैं, खड़े रह जाते हैं। अब हम सब भी अपने लिए सोचें इस बात को, अपना जायजा लें, कौन से इस्लाम के अहकामात हैं कि ये, आप हर एक को अपना अपना खुद जायजा लेना है, आप अपने लिए सवाल लिखें, कौन से इस्लाम के अहकामात हैं कि जिनका मुझे पता है कि अल्लाह का हुक्म है, लेकिन मेरे लिए वो ऐसे ही हैं जैसे जुलुमात, और मेरे लिए वो ऐसे ही जैसे राद, उनको सुन के मेरा यही हाल होता है कि जैसे कानों में मैं उंगलियां ठूंस लूं कि मुझे सुने भी ना ये, मैं सुनना भी नहीं चाहती इन बातों को, इस टॉपिक को। कौन कौन से हैं अल्लाह के हुक्म, उन पर अमल करना मेरे लिए मुझे नामुमकिन लगता है, मुझे ऐसे लगता है कि मैं मर जाऊंगी अगर मैंने इनके ऊपर, हज़र अल मौत, मुझे मौत की तरह लगते हैं वो, और मैं खड़ी हो जाती हूं, मैं नहीं करती। और कौन से हुक्म है कि चूंकि वो मेरी कन्वीनियंस पे हैं इसलिए मैं उनको करती हूं। जब मैंने देखे आपको ये बहुत सिंपल सी एक बात बता दी है, जब इंसान करने लगता है ना तो आसानी हो जाती है। अब कई लोगों के लिए पांच वक्त नमाज पढ़ना भी आसान नहीं है, उनको वो भी मुश्किल लगता है, और कई लोग तहज्जुद भी आसानी से पढ़ रहे हैं पांच वक्त की नमाज के अलावा। क्या चीज है, एक वही अमल है, एक के लिए मुश्किल और एक के लिए आसान क्यों हो गया? एक जैसे दो लोग हैं, एक ने करना शुरू कर दिया, कूद गया, उसने सोचा नहीं, और दूसरा जो है वो डरता ही रहा, उसको ऐसे लगा ये मेरे लिए मौत है। तो अल्लाह ने अहाता किया हुआ, याद रखें अल्लाह की पकड़ से कोई निकलने वाला नहीं है, यानी कानों में जितनी मर्जी उंगलियां ठूंस लो मगर तुम बच तो नहीं सकते अल्लाह की पकड़ से। तुम सोचते हो मैं आजाद हूं, मैं जो मर्जी करूंगी, जब मर्जी चलूंगी, जब मर्जी रुक जाऊंगी, मेरी मर्जी। नो वल्लाहु महीतुम बिल काफिरीन, ये तुम्हारी भूल है, अल्लाह ने घेरा हुआ है चारों तरफ से। सोचें जरा कि कोई किसी मुजरिम को कह दिया जाए कि बाहर से पुलिस के लाउडस्पीकर पे, चलो मुजरिम ना भी है वो कोई आम बंदा है, उसको बाहर से वो कह रहे हैं कि तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया गया, अब तुम कहीं भाग नहीं सकते हो, अपने आप को हमारे हवाले कर दो, तो उसकी जान हवा हो जाएगी, क्या हालत रहेगी उसकी। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला अहाता किए हुए उनका, जिनके ये हालात हैं। वलौ शाअ अल्लाहु लज़हब बिसमईहिम व अबसारिहिम, और अगर अल्लाह चाहे तो अल्लाह ताला जरूर ले जाता इनकी भी समात और इनकी भी बसारत। पिछले में क्या था, सुम्मुन बुकमुन उमियन, वो तो अंधे गूंगे बहरे हो चुके हैं, उनका नहीं है कोई चांस, लेकिन इनके पास अभी चांस है। अगर अल्लाह चाहता तो इनकी भी समात और बसारत ले जाता, ना इनको कुछ दिखता और ना इनको कुछ सुनता, ये भी वैसे के वैसे ही हो जाते, यानी इनकी भी तौफीक बिल्कुल छिन जाती, ना ये हक को देख सकते, ना कोई इनको बताता और ये वापस आते। लेकिन इनके पास चांस है, दे हैव चांस, इनके ये मुनाफकत की पहली स्टेज में अभी, या समझ लें ईमान की लास्ट स्टेज पे है, ज़ोफ़ है ईमान है, कमजोर तरीन ईमान है इनका, कमजोर तरीन ईमान के बाद ही फिर मुनाफकत शुरू हो जाती है ना। तो आइदर आप इनको ये कह सकते हैं कि ईमान की बॉटम पे बिल्कुल लास्ट उसके ऊपर है, और या फिर ये एंटर हो गए हैं फर्स्ट स्टेज में, उसके नीचे तो क्या है, मुनाफकत ही है, तो या फिर मुनाफकत में एंटर हो गए उसकी पहली स्टेज पे। अल्लाह ताला ने अभी इनको चांस दिया है, वार्निंग है यहाँ पे, अगर अल्लाह चाहे ना तो देख लो, याद रखो कि तुम्हें पकड़ सकता है, दिस इज अ वार्निंग, लेकिन क्या है, अभी अल्लाह ने तुम्हें टाइम दिया है, अभी अल्लाह ने तुम्हें चांस दिया है कि अपने आप को सही कर लो। इन्ना अल्लाह अला कुल्ली शैन कदीर, ये ना समझना कि अल्लाह ऐसे नहीं कर सकता, अल्लाह हर चीज पर कादिर है, वो ले जा सकता है तुम्हारी भी समात और बसारत, तुम्हें भी ऐसे ही कर सकता है जैसे वो लोग हैं। अब उन लोगों को तो हक नजर ही नहीं आता, उन लोगों के लिए दीन इस्लाम में इतनी मीन मेखे हैं, जैसे बिल्कुल काफिर सोचते हैं ना, उनकी भी सोच ऐसे ही हो गई इस्लाम के बारे में, वो भी इस्लाम के ऊपर इसी तरह इतराजात करते हैं, वो भी इस्लाम के ऊपर इसी तरह बातें घड़ते हैं, और वाकई ऐसे होता है ना, आज भी आप देखेंगे मुसलमानों में ऐसे लोग हैं। तो वो कौन सी पॉइंट पे पहुंच चुके हैं कि अब उनके अंदर की जो तौफीक है ना वो भी छिन गई है, अब उनको नजर ही नहीं आ रहा कि हक और बातिल में फर्क क्या है, उनको नजर ही नहीं आ रहा कि भलाई और बुराई क्या है। तो ये ना हो कि तुम्हारा भी ये हाल हो जाए, अभी तो ठीक है तुम्हारा कमजोरी है, तुम कहीं चले कहीं कहीं चल भी लेते हो, ये ना हो कि फिर बिल्कुल ही पीछे रह जाओ, क्योंकि अगर इसी पे बढ़ते गए तो फिर यही होगा। तो ये भी एक बीमारी है, और बीमारी की दवा ना की जाए तो क्या होता है, बढ़ती जाती है ना। तो ये ना हो अल्लाह ताला तुम्हारी एबिलिटी छीन ले, वार्निंग दी है अल्लाह ताला ने। और अगर हम अपने आप को पहली कैटेगरी में ना सही दूसरी कैटेगरी में देखें ना, तो हमें ऐसे लगता है जैसे हमारी अपनी तस्वीर खींची गई है यहाँ पे। हम सब क्या चाहते हैं पहले ये बताएं, हम सब क्या चाहते हैं, कौन सा कुरान हमें अच्छा लगता है बताएं, या सोच लें चलो हम क्या मुसलमानों की मेजॉरिटी जो है कौन सा कुरान उनको अच्छा लगता है, जो बरकतों वाला कुरान हो, जो वजीफों वाला कुरान हो, जो बस थोड़ी बहुत कुछ और सवाब कमाने वाला कुरान हो। वो नहीं चाहते कि ऐसा कुरान लें जिसमें ये लिखा हो कि ये करो और ये ना करो, राइट? इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं ना, हम तो तिलावत करते हैं कुरान की, तो हमें क्या जरूरत है सीखने की, हम रोज पढ़ते हैं कुरान को, एक दो रुकू पढ़ लेती हूँ सुबह को। ये सीखने का आप क्यों कहते हैं कि आओ सीखो, ये नहीं हमसे किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? इसलिए कि ये हमसे सुना भी नहीं जाता कि करो ये और ये ना करो। इसमें तो फिर कहीं, अभी मैं बता देती हूँ, कई लोगों को ये खौफ होगा इसमें हिजाब की आयतें ना आ जाए, कहीं हमें हिजाब ना लेना पड़ जाए, किसी के लिए कोई और चीज मुश्किल होगी, किसी के लिए किसी को माफ करना मुश्किल होगा, किसी के लिए सूद की आयात मुश्किल होंगी, किसी के लिए को तोहमत ना लगाने वाली आयात मुश्किल होंगी, किसी के लिए जो जहन्नुम की और आखरत के दिन की, कयामत के दिन की आयात है वो मुश्किल होंगी। तो कई चीजें हैं जो हमारे फियर्स होते हैं, हम फिर उस वजह से कुरान की तरफ ही नहीं आते, क्योंकि हमें अच्छा बस ये लगता है कि ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ते जाओ, हमें हर हर हर्फ के बदले 10-10 नेकियां मिलती जाएं, बस ये इतना काफी है, जुलुमात और रात ना हो इसके अंदर। हाँ, जब बर्क आएगी कभी तो फिर ठीक है, जब मैं समझूंगी कि हाँ मेरे लिए ठीक है तो फिर मैं कर लूंगी, लेकिन जो मेरी कन्वीनियंस हो, जिसमें मुझे इजी लगे, जो आज के जमाने के मुताबिक भी चल सकती हो चीज, नहीं ऑपोजिट द टाइड्स मुझे अगर स्विम करने को कहा जाए तो वो नहीं मैं कर सकती। हाँ, जिधर को हवा का रुख है उधर को चलती रहूंगी, जिधर सारे चल रहे हैं। तो क्या हम सबके पोल नहीं खुल जाते इन आयात में? और फिर देखें कि कितनी बड़ी वईद अल्लाह ताला ने दी है इनमें। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे ऐसी मुनाफकत से। तो ये जो ऐसे मुनाफिक है ना, आप देखें कयामत के दिन क्या होगा। इब्ने कसीर में है ये बात कि रोजे कयामत भी इनका यही हाल होगा कि जब लोगों को उनके ईमान के मुताबिक नूर मिलेगा। ये आपको थोड़ा सा बता दूं, जिनको नई इल्म, सूरह हदीद में ये आयात आती हैं, जो पढ़ चुके हैं उनको पता होगा कि कयामत के दिन एक पुल, जिसको हम पुल सिरात कहते हैं, जहन्नुम के ऊपर वो रखा जाएगा, और उस पुल सिरात से गुजर के हर एक को जन्नत में पहुंचना है। अगर पुल क्रॉस कर लिया सलामती के साथ फिर तो जन्नत में चला गया, और अगर ना क्रॉस कर सका तो नीचे क्या है, अगर उससे गिर गया तो क्या है नीचे, जहन्नुम है। तो वा इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, हर एक को, एवरी सिंगल पर्सन, चाहे वो कोई पैगंबर है या कोई कोई भी है, हर एक को उस पुल को क्रॉस करना है, मैंडेटरी है। अब वहां पे पिच डार्कनेस है, उस अंधेरे के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होगी नूर की, लाइट की, हर एक को लाइट मिलेगी अपनी। अब क्या होगा, बाज को तो इतनी रोशनी मिलेगी। अच्छा, अब ये याद रखिएगा कि काफिर तो ऑलरेडी जहन्नुम में जा चुके हैं, वो तो इस पॉइंट तक पहुंचे ही नहीं है ना। अब यहां पे मिक्स्ड है, मुनाफिक भी हैं, पक्के मोमिन भी हैं, सारे जिन्होंने जिन्होंने कलमा पढ़ा हुआ, क्योंकि अब आगे जन्नत है ना, तो जन्नत में जाने के लिए इस पुल से क्रॉस करके जन्नत में जाना है। एवरीबडी इज अज्यूमिंग के सारे क्रॉस करके चले जाएंगे, लेकिन अब ये है फाइनल टेस्ट, लिटमस टेस्ट है आपके, कौन है जिसके दिल में कितना ईमान है, उसी ईमान के मुताबिक हर एक को नूर मिलेगा। किसी को तो इतना नूर मिलेगा कि जितना डिस्टेंस पहाड़ के बराबर, या कह लें पहाड़ के बराबर नूर मिलेगा। किसी को इतना ज्यादा नूर मिलेगा जितना खजूर का तना है, किसी को इतना नूर मिलेगा जितना हजारों मील का सफर, मदीना से लेके सना तक, यमन में एक जगह वहां तक, इतना नूर मिलेगा, बहुत ज्यादा। तो हर एक का नूर डिफरेंट होगा, क्यों? इसलिए कि देखो हर एक का ईमान फर्क है ना, हम सब बैठे में हम सब का ईमान डिफरेंट है, लेकिन कोई भी किसी के ईमान को यहां पे नाप नहीं सकता, मेजर नहीं किया जा सकता, ये अल्लाह ताला जानता है। और अल्लाह ताला दुनिया में टेस्ट्स भेजता है, मुख्तलिफ अहकामात ऐसे दिए हैं कि उन्हीं में इंसान का इम्तिहान हो जाता है कि वो कितना चल सकता है, उसका ईमान कितना है। ईमान होगा तो अमल हो सकेगा, ईमान नहीं है तो अमल नहीं हो सकेगा। जिसको अपने रब के ऊपर यकीन है ना, ईमान क्या चीज होती है? ईमान यह कि बगैर दलील के मैं मान जाऊं, मुझे दलील नहीं कुछ चाहिए, बस मैं मान गई, ये ईमान है। जिसके अंदर ईमान होगा अल्लाह पर, जिसको ईमान होगा आखरत पर, वो भला दुनिया में स्ट्रेट नहीं चलेगा क्या? जितना ज्यादा ईमान होगा उतना है उसको बड़ी से बड़ी हर्डल्स क्रॉस करना कोई मुश्किल नहीं होगी, चलता ही जाएगा। तो ईमान जितना जिसका ज्यादा होगा ना, अब यहां पे आज हमें नहीं पता चल रहा, मगर वहां पे जब नूर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो सबको पता चल जाएगा किसका कितना ईमान था। हम सब भी तो होंगे ना वहां पे, तो जब नूर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या पता नहीं चलेगा किसके पास कितना ईमान है। तो किसी को इतने इतने बड़े नूर मिलेंगे, इतने इतने बड़े, और किसी को इतना थोड़ा सा नूर मिलेगा कि बस उसके ये पैर का अंगूठा है ना, इसके आगे लगाओगा, जो कभी वो लाइट जलेगी कभी बुझेगी, कभी जलेगी कभी बुझेगी। जैसे आप ट्यूबलाइट को देखते हैं, कभी कभी वो ऐसे करती है ना मसले, कभी जलती कभी बुझती, कभी जलती कभी बुझती। तो अब वो इसमें कैसे चले, क्योंकि उनका दुनिया में ईमान का हाल क्या था, यही था जो इस एग्जाम्पल में, ये इस मिसाल दी गई ना कि जब रोशनी होती चल पड़ते हैं, जब अंधेरा हो जाता है रुक जाते हैं। तो दुनिया में भी तो ऐसे ही थे ना, जब आसानियां होती थी तो कर लेते थे, जब मुश्किल होती थी तो रुक जाते थे। तो यहां पे भी ऐसे ही है, ठीक है। तुम भी हमेशा चलते नहीं रहे, तो आज तुम्हारे लिए भी हमेशा का नूर नहीं है, तुम्हारे लिए भी वो नूर है। तुम भी इसी तरह चलते रुकते थे ना, आज तुम्हारा भी नूर कभी बंद होगा कभी खुलेगा, कभी बंद होगा कभी खुलेगा, जरा सा खुलेगा कभी रोशन होगा तो जरा सा चलेंगे, फिर अंधेरा हो जाएगा, फिर ठहर जाएंगे। इसी चीज को एग्जैक्टली वहां पे अल्लाह ताला ने प्रैक्टिकल फॉर्म में कर दिया। तो अब रुक गए, फिर जरा सा नूर उनकी टॉर्च जली, जरा सा चले, फिर बुझ गई। और बाज बदनसीब ऐसे होंगे कि उनका तो बिल्कुल ही नूर बुझ जाएगा, अब मिला तो था लेकिन अब बंद हो गया, ठीक है। क्यों? इसलिए कि वो इस्लाम लाए तो थे लेकिन कभी इसके ऊपर अमल नहीं किया। अब तुम्हारे लिए भी कोई नूर नहीं है, ये पूरे मुनाफिक थे ना। इसीलिए उस दिन वहां पे सूरह हदीद में ही है, यौम यकूलुल मुनाफिकून वल मुनाफिकात अल्लज़ीन आमनु उन्ज़ुरूना, हमारी तरफ देखो, हमें अपने नूर में से दो, मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें। इसका मतलब औरतें भी तो मुनाफिक है ना, वो ईमान वालों से कहेंगे, पुकारेंगे उनको, कहेंगे जरा रुको, हमें भी आ लेने दो, हम भी तुम्हारे नूर से थोड़ा सा नूर ले लें, तुम्हारी लाइट में से ले लें। तो वो उनको क्या कहेंगे, जाओ पीछे जाओ, वहां पे नूर है, वहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यहां पे थोड़ी हम थोड़ी दे सकते हैं, जाओ वहां से जाके लो। वो पीछे पलटेंगे और उनके और ईमान वालों के दरमियान एक आड़ आ जाएगी, एक दीवार आ जाएगी, एक हिजाब आ जाएगा, और वो उन तक नहीं पहुंच सकेंगे। अब ये लोग दुनिया में सब घुले मिले रहते थे, एक साथ रहते थे, इसीलिए तो उनको पुकार रहे हैं, सुनो सुनो हमारी बात। और फिर उनको कहेंगे भी, हम तुम्हारे साथ नहीं होते थे दुनिया में, याद नहीं है तुम्हें, मैं तुम्हारी फ्रेंड थी, मैं तुम्हारी बहन हूं, मैं तुम्हारी बेटी हूं, मैं तुम्हारी माँ हूं। लोग कहेंगे एक दूसरे से, मगर आज ईमान के फर्क की वजह से देखो अपने पर आए हो गए। एक में ईमान का नूर था और दूसरे का नूर बुझा हुआ था, तो आज वहां पे अल्लाह ताला ने नूर बुझा दिया। और जिनका टिमटिमा रहा है वो वल्लाहु आलम के वो क्रॉस कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, हो सकता है उनका टिमटिमाता ही रहे, हो सकता है चले जाए, हो सकता है अमल ज्यादा देर किया और कम देर वो खड़े रहे हो। जैसे यहाँ पे ना एग्जाम्पल में कि कभी चले कभी खड़े हुए, हो सकता है चले ज्यादा और खड़े कम हुए। लेकिन याद रखें, बिजली क्या ज्यादा देर चमकती है या ज्यादा देर अंधेरा रहता है जब बारिश हो रही होती है, बताए? बिजली तो सिर्फ स्प्लिट सेकेंड के लिए चमकती है ना, उसके बाद फिर अंधेरा हो जाता है। तो इसका मतलब है अमल कम है, क्योंकि चमक तो कभी कभी होती है, उसमें थोड़ी देर चल लेते हैं, फिर उसके बाद खड़े के खड़े हैं, खड़े के खड़े हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं उसी सूरत में कि उस दिन तू देखेगा कि मोमिन मर्द और मोमिन औरतों के आगे आगे और उनके दाएं तरफ नूर होगा, उनके तो आगे आगे और दाएं दाएं नूर दौड़ा जा रहा होगा, और इसी नूर की रोशनी में, इसी से हेल्प लेकर वो फिर पुल से रात क्रॉस करेंगे। इसलिए क्योंकि अल्लाह अकबर अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, पुल से रात बिल्कुल अंधेरा है और जहन्नुम की आग भी काली स्याह है, वहां पे कोई रोशनी नहीं है। जिसका तो नूर पूरा हुआ और इतना ज्यादा हुआ, वो तो चलो या कम भी हुआ, चलो खजूर के तने के बराबर है, किसी का पहाड़ के बराबर, चलो कोई ना कोई तो उनके पास नूर है ना, वो तो क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन कईयों का जो नूर ही बुझ गया तो फिर अब क्या होगा। इसीलिए तो ईमान वाले भी डर जाएंगे, कहेंगे रब्बना अतमिम लना नूराना, ऐ हमारे रब हमारे नूर को मुकम्मल कर दे। पैगंबर दूसरी तरफ पहुंच जाएंगे तो वो भी दुआएं करेंगे कि अल्लाह इनके नूर को मुकम्मल कर दे। ये इतनी मुश्किल जगह है, इतनी मुश्किल जगह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था तीन जगहों पे कोई किसी को नहीं पूछेगा, और उन तीन जगहों में एक ये जगह है पुल से रात, जब तक कि कोई क्रॉस ना कर जाए। हर एक को अपनी पड़ेगी, जाहिर है नीचे जहन्नुम है, किसी का जरा सा पैर फिसला तो वो अंदर गिर गया। आप सोचें आप जरा कि कोई किसी आप ब्रिज से जा रहे हैं, बहुत नैरो ब्रिज है, आपकी गाड़ी जा रही है और गाड़ी की हेडलाइट्स फेल हो गई हैं और घुप अंधेरा है और नीचे समंदर है, पानी वाला समंदर, तो हालत क्या होगी। और ब्रिज के साइडों के ऊपर कोई वो आड़ भी नहीं लगी हुई, कोई बार्स नहीं लगी, क्या हालत होगी घुप अंधेरे में। तो ये तो पानी का समंदर है, और नीचे आग हो तो फिर पता है ये कुर्बानी के जानवर है ना, ये वहां पे सवारी बनेंगे, ये जो कुर्बानी आप इंशाल्लाह देंगे आप। अल्लाहु अकबर। तो याद रखिए उस दिन किसी की रोशनी से इंसान को फायदा नहीं हो सकेगा, हर एक की लाइट सिर्फ उसको फायदा दे रही होगी। तो इसलिए किसी से बोरो भी नहीं कर सकते कि थोड़ी सी देर के लिए मुझे दे दो अपनी टॉर्च, नहीं, वो उसके ऊपर होगी, वो उसी को फायदा देगी, किसी और को ना उसे फायदा मिल सकता ना कोई ले सकता। इसीलिए वो कह रहे हैं ना जाओ पीछे से जाके लो, कोई अपनी रोशनी दे रहा, क्योंकि दे सकते ही नहीं है, वो जहां जाए जाएंगे उनकी रोशनी बस उनके साथ ही जाएगी। ये नूर है ना जो दिल में है, ईमान का नूर, वो ही समझ लें, उस वक्त इस वक्त नजर नहीं आ रहा, वो उस वक्त नजर आने लगेगा, वो उस वक्त एक शेप में आ जाएगा, जैसे हर एक अमल है वो उस दिन एक शेप में आ जाएगा। इसी तरह ये मुनाफ़क़त है, ये अंधेरे हैं, तो जाहिर है ये तो ईमान का नूर बुझा देता है ना, ईमान नहीं होता जहां पे मुनाफ़क़त है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिल जो है वो चार किस्म के हैं। एक तो साफ दिल होता है जो रोशन चिराग की तरह चमक रहा होता है, एक वो दिल है जो गिलाफ में है जैसे जिसके ऊपर कवर है, तीसरे वो दिल है जो उल्टे हुए में, और चौथे वो दिल है जो मिक्स्ड है। तो पहला दिल तो मोमिन का दिल है जो पूरी तरह चमक रहा है, दूसरा दिल काफिर का दिल है जिसपे पर्दे पड़े हैं, तीसरा दिल खालिस मुनाफिकीन का, जिनके दिल उल्टे हो गए, उनको कोई भी बात बताओ ना उनको समझ ही नहीं आने, क्योंकि कोई बर्तन उल्टा कर दें तो अब आप उसके ऊपर सारा दिन पानी चलाए रखें वो भरेगा ही नहीं। चौथा दिल उस मुनाफिक का दिल है जिसमें ईमान भी और निफाक भी है, दोनों जमा है, ये जो जो मिसाल अभी हमने पढ़ी है, इसमें दोनों चीजें मिक्स हैं, कभी चल पड़ता है कभी रुक जाता है, कभी चल पड़ता है कभी, ये पक्के मुनाफिक नहीं है अभी। तो दोनों अल्लाह ताला ने शेड्स दिखा दिए, एक पहली एग्जाम्पल में पक्के मुनाफिक जो कभी अब वापस नहीं आएंगे, और एक दूसरी एग्जाम्पल में जिनके अंदर ईमान और निफाक दोनों जमा हो चुके हैं, इस ईमान की वजह से कभी कभी चल पड़ते हैं और इस निफाक की वजह से फिर रुक जाते हैं। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, या अल्लाह हमें इनमें से ना करना। तो अभी तक हमने तीन ग्रोहों का जिक्र पढ़ लिया है और यहाँ पे जाके इन तीन ग्रोहों की बात मुकम्मल हो गई है। पहले ग्रोह का जिक्र हमने आयत नंबर 1 से 5 तक में पढ़ा, वो थे पक्के मोमिन लोग, मुत्तकी लोग, अल्लाह ताला ने सिर्फ देखें उनके लिए फरमाया वा उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, आयत नंबर 5 निकाल लें। और किसी को नहीं अल्लाह ने फरमाया, इनको नहीं कहा जिनकी अभी हमने मिसाल पढ़ी है, कभी चल पड़े कभी रुक गए, कभी चल पड़े कभी रुक गए, इनको नहीं कहा कि ये भी कहीं फलाप आ जाएंगे, ये भी कामयाब है, चलो कभी तो चल पड़ते हैं, नहीं। फिर उसके बाद आयत 6 और 7 में उनका जिक्र है कि जो पक्के काफिर हैं, सील हो चुके उनके दिल और उनके कान, उनके लिए भी बड़ा अजाब है, उनकी आंखों के आगे भी पर्दा पड़ा हुआ। फिर तीसरा ग्रोह है आयत नंबर 8 से लेकर 20 तक, इतनी डिटेल अल्लाह ताला ने इनकी बताई, इसलिए बताइए कि ये ऐसी एक बीमारी है समझ लें, जो दीमक की तरह, निफाक जो है ना समझ लें टर्माइट है, दीमक जैसे अंदर अंदर से लकड़ी को खोखला कर देते हैं ना, बाहर से आपको क्या लगती है कि मेरा फर्नीचर बिल्कुल ठीक है, अंदर अंदर से सारे कीड़े ने उसको खा लिया होता है, पता उस दिन चलता है जिस दिन बिल्कुल ही आपकी कुर्सी धड़ाम से गिर जाती है। तो मुनाफकत भी ऐसे ही है, ये निफाक एक कीड़ा है, ये कीड़ा अंदर अंदर से ईमान को खा लेता है और बाहर से इंसान लगता है कि बस ईमान वाला ही है, कलमा जो पढ़ रहा है, नमाज जो पढ़ रहा है, मगर अंदर से खोखला है बिल्कुल, उसका ईमान नहीं है। अब पैदा हो गया मुसलमान के घर में, या बस दो चार ठूंगे मार लिए तो बस उसने सोचा कि मैं मुसलमान हूं, या उसकी भी बॉदर ना किया, उसको भी जो चीज बस दिल किया कभी कर लिया, नहीं किया तो नहीं किया, तो ये तो दीमक चाट रही है अंदर ही अंदर, इसको ऐसा मर्ज हो गया, अगर इसका इलाज ना कराया तो इसके लिए वे अदाबुन अलीम है, दर्दनाक अजाब है। और उसकी सारी अल्लाह ताला ने सिफात बता दी, उन सिफात को की लिस्ट बनाए अपने पास कि जो लोग अमल करने वाले हैं, जो पक्के ईमान वाले हैं, वो क्या लगते हैं, बेवकूफ लगते हैं या नहीं, यहां अकलमंद लगते हैं। फिर उनका हम मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं उनके पीछे, बातें बनाते हैं जब उनके पीछे होते हैं किसी और मजलिस में, और जब उनके पास जाते हैं तो फिर हम उनका दम भरने लगते हैं, क्या करते हैं, देखें अपने अंदर, इसको भी चेक करें। फिर हम झूठ पे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुनाफिक की निशानियां, और उनमें से 3 निशानियां जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, उनमें पहली यही है, झूठ बोलना, वादा खिलाफी करना, ईमान अमानत में खयानत करना। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसमें पूरी तीनों है वो तो पक्का मुनाफिक है, जिसमें एक खसलत है तो वो उसमें निफाक की एक समझ लें चीज है, एक सिफत है, जब तक इसको ना छोड़ दे, एक होगी इसमें से बात ना उसके अंदर बुराई इन तीनों में से, तो एक निफाक की तो वो कीड़ा है, एक निफाक का पोर्शन तो है उसके अंदर। और फिर फसाद फिल अर्ध, फसाद फैलाना और अपने आप को कहना हम तो इसलाह करने वाले हैं। और फिर उसके बाद जब मेरी कन्वीनियंस होती है, जब मुझे अच्छा लगता है, जब मुझे किसी बात की लॉजिक पसंद आ जाती है, तब मैं उस पर अमल करती हूँ, या दीन का कोई भी हुक्म आ जाए, चाहे वो मेरी पसंद का हो ना पसंद का हो, मेरी ख्वाहिश के मुताबिक हो या ना हो, मेरी कन्वीनियंस का हो या ना हो, उसके लिए मुझे रात को जागना पड़े या उसके लिए मुझे नींद कुर्बान करनी पड़े, या उसके लिए मुझे कोई भी अपनी जॉब कुर्बान करनी पड़े, या कुछ भी कुर्बान करना पड़े, मैं करने के लिए तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि बस अल्लाह का हुक्म है। तो मैं किधर स्टैंड करती हूँ, मैं इन 3 ग्रोहों में कहाँ हूं? अल्हम्दुलिल्लाह कि ये दूसरा ग्रोह है, इसके अंदर तो हम नहीं है, ठीक है, इस पे भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अब पहला ग्रोह रह गया या तीसरा रह गया, ये 2 रह गए, आइदर उसमें से हैं या इसमें से हैं, तो ये आईना अल्लाह ताला ने दिखा दिया, अपने ईमान का जायजा लो और अपनी बीमारी का इलाज करो। اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور। चले इंशाल्लाह ताला शुरू से इस सूरत को हम सुनेंगे, आप गौर करिए आपको कितना इसमें से समझ आया अभी तक, अलिफ लाम मीम से लेकर कुल शैइन क़दीर तक, जायजा लीजिए हर हर आयत समझ आ रही है या नहीं, उसका वर्ड्स भी और वैसे भी उसकी जो तफसीर आपने सुनी है वो सब समझ आ रही है। तो इंशाल्लाह चेक करें अपने आप को।
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومن ما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.
اچھا ایک بات آپ دیکھیں یہاں پہ سبحان اللہ جو قرآن کریم کو بارش سے تشبیہ دی گئی ہے نا تو بارش بھی رحمت ہوتی ہے کھیتوں کو شاداب کرتی ہے ہرا بھرا کرتی ہے اسی طرح قرآن سے بھی روحوں کو تازگی ملتی ہے شادابی ملتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو اسلام کو بھی نعمت قرار دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا تو قرآن یا اسلام جو بھی اسے لیں گے تو یہ تو ایک نعمت ہے ایک رحمت ہے اس کو اپنے لیے انسان مشکل نہ سمجھے اس کو اپنے لیے ایک رکاوٹ نہ سمجھے اپنی زندگی کے لیے بلکہ اس کے اوپر عمل کرنے کو اپنی سعادت سمجھے اس کو نعمت کے طور پہ لے انعام کے طور پہ لے ان شاء اللہ تعالیٰ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.